मेरे अत्यंत प्रिय आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 5 जनवरी 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं मनोज कुमार सिन्हा, आप डोंडी लोहरा छत्तीसगढ़ से हैं, भगवती प्रसाद आप रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से हैं, जितेंद्र सिंह छत्री आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, आशीष कुमार कुरील उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, विनोद कुमार सिंह दरियापुर बिहार से हैं और गुड्डू कुमार गुप्ता बक्सर बिहार से हैं। तो मनोज, भगवती, जितेंद्र, आशीष, विनोद और गुड्डू आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों यहां मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मुझे इस बीच में काफी मेल मिले हैं और ये उन मित्रों के मेल हैं जिन्होंने अभी जो 11 से 25 मार्च के बीच 15 दिन की क्लासेस लगनी है एकेडमी की, उसमें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। मेल में अक्सर वो उन्होंने जानने की कोशिश की है कि सर जब तक क्लासेस शुरू नहीं होती हैं तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें गाइड करें। मैं आप सबकी इस उत्सुकता का बहुत ही खुले दिल से और बहुत ही उत्साही मन से मित्रों स्वागत करता हूं कि अभी जो वक्त बचा हुआ है, हालांकि अब थोड़ा सा ही वक्त है, उसमें भी आपके अंदर कुछ करने की चाहत मौजूद है, यानी कि आग जलनी शुरू हो गई है और ये बहुत अच्छे लक्षण हैं। लेकिन दोस्तों यहां मैं आप लोगों को जो सलाह देना चाहूंगा वो कुल मिलाकर यह कि फिलहाल तो आपके लिए यदि संभव हो सकता है तो डेफिनेटली डेली ऑडियो लेक्चर तो आपको सुनना ही चाहिए, लाइफ मैनेजमेंट भी सुन सके तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आप सब जो क्लासेस में आने वाले हैं रेडियो न्यूज बिल्कुल भी मिस न करें, यदि संभव हो सके तो दूरदर्शन की न्यूज भी देखें सुने, और कोई भी एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार जो भी आपका मीडियम है जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं हिंदी का या अंग्रेजी का वह भी आपको रोजाना पढ़ना चाहिए। जहां तक सिलेबस के अनुसार किताबें पढ़ने का सवाल है, चाहे वह एनसीईआरटी की किताबें हैं या दूसरी किताबें हैं, मित्रों अभी आप थोड़ा सा उसके लिए रुक जाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं कि आप रुक जाइए, वह इसलिए कि ये जो 15 दिन की क्लासेस हैं आप देखेंगे कि इसका जो सारा का सारा जोर है वो इसी बात पर है कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। और पढ़ना कैसे चाहिए का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पढ़ना आता ही नहीं है, नॉट एट ऑल। आपने अभी तक सफलता ही प्राप्त की है तो बिना पढ़े आए तो सफलता नहीं मिल गई है, किसी ने खैरात में आपको नहीं दे दी है, आपने उसे हासिल किया है। यहां मैं जो कहना चाह रहा हूं कि पढ़ना कैसे चाहिए वह सिविल सर्विस की दृष्टि से, या कह लीजिए कि सिविल सर्विस के रिक्वायरमेंट के लिहाज से। यहां आपको सारी बातें बताई जाएंगी कि आप हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, एसे की तैयारी कैसे करेंगे, ये जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट विषय होते हैं उन सबके बारे में आपको बताया जाएगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब वह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा और आप देखेंगे कि तब आपके लिए इन्हीं विषयों को पढ़ने की बात तो आप भूल ही जाएंगे, समझना कितना आसान हो जाएगा। और जैसे ही आप विषयों को समझना शुरू कर देंगे आप समझ लीजिए कि सिविल सर्विस की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयारी हो रही है। तो इसीलिए दोस्तों अभी उसके लिए आप बिल्कुल बेचैन न हो, बहुत ही सामान्य तरीके से ही आप अपनी दिनचर्या को बनाए रखें, फिर आप सब क्लासेस में आएंगे ही, फिर ढेर सारी चर्चाएं होंगी, केवल पढ़ाई ही नहीं दूसरी चीजों पर भी बहुत सी बातें होंगी, तब फिर आप देखेंगे कि आपका जो सिस्टम बनना चाहिए सिविल सर्विस प्रिपरेशन का, जो फ्रेम तैयार होना चाहिए वो ऑटोमेटिक तरीके से तैयार होता चला जाएगा। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी सी सूचनाओं पर आऊंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि कल यूट्यूब पर मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम डाला गया है, रिवीजन कैसे करें, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में रिवीजन की क्या भूमिका है, पहली बात, और दूसरा करना कैसे चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसको लेकर के एक प्रोग्राम डाला गया है। मैं चाहूंगा कि सच में यदि आप गंभीर स्टूडेंट हैं सिविल सर्विस की तैयारी के, तो आपको बहुत ध्यान से उसे सुनना ही चाहिए। कुछ अतिरिक्त सूचनाएं फ्रेंड्स, जो मैं अक्सर हर शुक्रवार को आप लोगों को देता हूं, उसमें पहली बात तो यह है कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन शनिवार यानी कि कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, जैसे कि आज मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें योजना के दो आर्टिकल होंगे, कुरुक्षेत्र के भी दो आर्टिकल होंगे। जब मैं दो आर्टिकल कर रहा हूं तो दो टॉपिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक उसमें हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा, यानी कि दो एक योजना और कुरुक्षेत्र इंग्लिश के, और एक एक योजना आपके योजना कुरुक्षेत्र हिंदी के, ये आर्टिकल होंगे। साथ ही साथ वीकली क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र में राजनीति या लोकतंत्र की राजनीति विषय पर, और आप के लिए के खुशी की बात यह हो सकती है कि न्यूज को लेकर के आज मेरा कोई ऐसा व्यू नहीं बन रहा है कि मैं उस पर चर्चा करूं। कल की जो खबरें रही हैं उसमें कुछ कोई भी ऐसी खबर मुझे नहीं लग रही है जिसको लेकर के अलग से बात की जाए। हाँ, मैंने जो आज का मुख्य विषय चुना है कि लोकतंत्र में राजनीति या लोकतंत्र की राजनीति, आप जो भी कह लें, ये न्यूज को ही आधार बना करके चुना है। कल की आपने न्यूज सुनी, उसमें लालू यादव जी पर मुकदमा चल रहा है, फिर हमारे जो महिला विवाह संरक्षण जो संशोधन विधेयक जो था, सॉरी, उसको राज्यसभा में लेकर बहस हुई, गर्मागर्मी बहस हुई, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, और जो विपक्ष मतलब कांग्रेस मांग कर रही कि उसे प्रवर समिति को सौंपा जाए, इस तरह की खबरें आपने खूब सुनी। इसके बाद आपने पहली बार आपने ये देखा होगा कि कल की जितनी खबरें थी उसमें से ज्यादातर खबरों में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो हो रहा है, या हाई कोर्ट के निर्देश पर या स्पेशल कोर्ट के निर्देश पर, मतलब न्यायालय ज्यादातर समाचारों में थे। तो कल की जो न्यूज थी वो बड़े डिफरेंट किस्म का एक इम्प्रेशन दे रही थी, तो उसमें ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक कोई नहीं मिल पा रहा था, मतलब नहीं है जिसको लेकर हम बातें कर सके, लेकिन सबको मिलाकर जो एक विषय मुझे सिविल सर्विस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो दिखाई दिया, समझ में आया, वही है कि लोकतंत्र में राजनीति कैसे काम करती है। मैं इसी पर आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं, और याद रखिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, खासकर आपके मेंस के सेकेंड पेपर के लिए, यहां तक कि प्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहते हैं कि आप सही मायने में लोकतंत्र को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मित्रों, आइए मैं शुरू इस बात से करता हूं कि अब आप देखिए कि राज्यसभा में यह बिल, तीन तलाक वाला बिल रुक गया है। अब पता नहीं वो पारित होगा या नहीं होगा, जो भी है अब हम आगे क्यों के बारे में नहीं जानते। कल मैंने राज्यसभा के बारे में आपसे कुछ बातें की थी, प्लीज उसे ध्यान में रखें। सिविल सर्विस की यह बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आप अपनी बात को कितने बैलेंस तरीके से रख पाते हैं, और दूसरा कितने व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं, मतलब आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, और साथ ही साथ व्यावहारिक भी होना चाहिए। व्यावहारिक इस मायने में कि उसे इंप्लीमेंट किया जा सके, वो एग्रेसिव ना हो आप उसके बारे में। जैसे कल मैंने राज्यसभा के बारे में जो आपसे बात की थी, तो उसको सुनकर के आपको लगा होगा कि इससे तो अच्छा है कि राज्यसभा को या तो खत्म कर दिया जाए या उसके अधिकार को बिल्कुल सीमित कर दिया जाए, जैसा कि मैंने ब्रिटेन का उदाहरण भी दिया था, तो आप उससे सहमत हुए होंगे, लेकिन वो एक तरफा सोच है। अब आप देखिए कि यहां क्या आपको दिखाई दे रहा है, मैं खासकर इसी बात की चर्चा आपसे करूंगा जो वक्त बचा हुआ है उसको देखते हुए। दोस्तों, देखिए कि 1986 में जब मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की बात आई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, तो उस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, अब आप कांग्रेस बीजेपी और ये दूसरे सब हटा दीजिए, है ना, उससे आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है कि सरकार किस कौन कोई सरकार सत्ता में थी, और हमारे यहां जिस तरह की प्रणाली है उसमें वही सरकार सत्ता में होगी जिसके पास बहुमत होगा। चलिए सुविधा के लिए हम कह देते हैं उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी को लगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लागू कर दिया जाएगा तो जो पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय है वो नाराज हो जाएगा, राइट, नाराज हो जाएगा तो बटने चले कि फिर वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। देखिए यहां डेमोक्रेसी है, वोट को इस तरीके से देखना डेमोक्रेसी में गलत नहीं है, यही तो जन आकांक्षा है ना, कि आप जनता की इच्छा को देख रहे हैं, आप जनता के विरुद्ध जाएंगे तो आपको वोट नहीं देगा, आप जनता की इच्छा के साथ जाएंगे या उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो वोट देगा, इस रूप में इसको समझिए। तो वो संसद में एक कानून लेकर के आए और कह दिया कि नहीं, गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, चलिए बात खत्म हो गई। इसके बाद ये भी लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में गया और राज्यसभा में भी पारित हो गया, एक्ट बन गया, खत्म हो गई बात। अब आप कल्पना करके देखिए कि यदि उस समय 1986 में राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत नहीं रहा होता, मतलब इमेजिन कीजिए, देखिए विश्लेषण तो इसी तरीके से किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं रहा होता तब क्या होता? पहली बात तो यही है कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कदम ही नहीं उठाती, लेकिन चलिए मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए कि भाई हमने तो किया, अगर राज्यसभा में पारित नहीं होने दे रहे लोग तो हम क्या करें, लेकिन देखिए हमने तो आपके लिए किया, हमने एक्ट लेकर के आ गए कि नहीं गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं है। चलिए तो या तो वो एक्ट लेकर के ही नहीं आती, और अगर वो एक्ट लेकर के आ गई तो राज्यसभा में रुक जाता, या राज्यसभा में राजनीति होती, या जो कुछ भी होता। तो हो सकता था कि उसी समय, अभी जो हमें मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण दिखाई दे रहा है उसी समय ही कुछ लागू हो चुका होता, क्योंकि राज्यसभा में इसे पारित नहीं करने देती। तो अब आप देखिए कि कल मैंने जो कहा था कि कहीं ना कहीं राज्यसभा जो लोकसभा आप या यूं कह लीजिए कि जो बहुमत है, बहुमत सरकार तो बहुमत की होती है, बहुसंख्यक दल की होती है, उसकी तानाशाही को या उसकी जो अपनी इच्छा है उस पर नियंत्रण लगाने का एक बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म है, पॉलिटिकल मैकेनिज्म है। अदरवाइज तो फिर जो लोकसभा में जो सरकार है वो जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि उसके लोकसभा में उसके पास बहुमत है, नो डाउट कि ये बहुमत जनता ने दिया है। लेकिन जिनके पास सत्ता होती है, याद रखिए शक्ति होती है, उनके असंतुलन होने की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। ये असंतुलन हमें दिखाई दे सकता है लेकिन उन्हें बहुत लग रहा है कि बहुत सोच समझ कर और बहुत जरूरी कदम उठाया गया है, चलिए हम यही मानते हैं, और सरकार जानबूझ करके कोई खतरनाक कदम ऐसे नहीं उठाएगी, लेकिन अपनी अपनी समझ की बात है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब जो पूरे की पूरी हमारी संसद है उसमें जो हमारे 545 विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, तो उसका मतलब ही यही है डेमोक्रेसी का कि ये सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं और उन राय सबकी सुनने के बाद कहीं फिर कॉन्सेंसस बन रहा है। चलिए सर्वसम्मति भी नहीं बने लेकिन अधिकांश लोगों की सम्मति बन रही है। तो इसलिए मित्रों कल मैंने जो राज्यसभा के बारे में बातें आपसे की थी, मुझे लगा कि उसके दूसरे पक्ष को भी लोकतांत्रिक प्रणाली को सामने रखकर मुझे आपसे बातें करनी चाहिए, तो कुछ बातें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं। तो मित्रों आज के इस मुख्य विषय जो के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग पर। इसी के संदर्भ में मैं आज न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का एक उल्लेख करूंगा फ्रेंड्स, कि नव दुनिया में डॉक्टर ए के वर्मा का एक लेख छपा है, एक नेता पर निर्भर होते सियासी दल। ये अच्छा लेख है, ठीक लेख है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज आप इसे भी देखेंगे, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अभी मैंने कहा कि उसमें अधिकांश लोगों की राय, लेकिन अगर निर्णय केवल एक व्यक्ति की राय बनने लगे या पूरी की पूरी पार्टी पर एक ही व्यक्ति का प्रभुत्व हो जाए तो उसका जो चरित्र है वो लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। तो उसको लेकर के एक आर्टिकल है, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जरूर देखें। और साथ ही एक और आर्टिकल है, वो है जयंतीलाल भंडारी जी का, भारत फूकेगा नई जान, खासकर अभी ब्यूनर आपने अभी देखा कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जो मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की जो बैठक हुई थी, उसको लेकर के कुछ मुद्दे उठे हैं। उस पर हम लोगों ने पहले भी थोड़ी सी बात की थी, उस पर एक आर्टिकल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस आर्टिकल को भी जरूर पढ़ें, और हो सके तो अपने पास आप इसे रख सकते हैं या इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ दोस्तों के नाम हैं: धीरज कुमार, सुषमा कुमारी गुवाहाटी से, अरुण अवस्थी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, गर्वित जैन दुबई से, वीरवती बदायूं उत्तर प्रदेश, आशीष और शिवा दुबे। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब इसी के साथ ही मैं आप सबसे 2 दिनों के लिए इजाजत चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं कि ये 2 दिन आपके बड़े खूबसूरत तरीके से बीते। मेरा अभिवादन मित्रों स्वीकार करें। नमस्कार।